आरवी ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। आरवी के बाद शान अंशु के पास आया और उसकी भी आंखें नम हो गईं। उसने अंशु को खूब लाड किया, बारी बारी सब उससे मिले। फिर नर्स के कहने पर आरवी ने अंशु को जैसे तैसे मनाकर थोड़ा सा दलिया खिलाया जो हॉस्पिटल से ही मिला था, और फिर अंशु को दवाई दी जिससे वो वापस नींद की आगोश में चली गई। अभी वो जितना सोएगी उसको उतना आराम मिलेगा और उतनी ही जल्दी वो रिकवर करेगी। सबको बाहर भेज दिया गया ताकि अंशु को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अब जाकर सबके चेहरे पर कुछ सुकून के भाव आए थे। आरवी अब भी गेट पर खड़ी अंदर लेटी अंशु को देख रही थी। सुयश जी ने अर्पिता जी को इशारों में ही कुछ कहा तो उन्होंने अपनी पलकें झपका दी और आरवी के पास चली आईं। आरवी अब भी अंदर ही देख रही थी तभी अर्पिता जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आरवी बेटा, अब अंशु ठीक है और सो रही है तो 2 घंटे से पहले नहीं उठेंगी। तब तक आप घर जाकर कपड़े बदल लीजिए और फ्रेश होकर आ जाइए। आपके कपड़ों पर खून लगा है। आरवी ने सर घुमाकर उनको देखा और इनकार करते हुए मायूसी से बोली, नहीं बड़ी माँ, मैं नहीं जाऊँगी। वो उठेंगी तो मुझे ढूंढेंगी। मैं नहीं जाऊँगी अब उन्हें छोड़कर। आरवी रुआंसी हो उठी। हर कोई उसकी स्थिति समझ रहा था। अर्पिता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, पर आप भी हमारी बात समझिए। आपके कपड़े गंदे हैं, ऐसे में आप अंशु के पास जाएंगी तो उन्हें इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। डॉक्टर ही कह गए हैं। फिर अभी अंशु सो रही है, आप शान के साथ जाकर जल्दी से कपड़े बदलकर वापस आ जाइएगा। हाँ बेटा, भाभी ठीक कह रही हैं, आप घर जाकर नहा धोकर फ्रेश होकर आ जाइए। खुद भी कुछ खा लीजिएगा और शान को भी कुछ खिला दीजिएगा, फिर वापस आ जाइएगा। तब तक हम हैं यहाँ अंशु के पास। सुभाष जी ने भी उसको समझाया। आरवी ने अब सर झुकाकर उनकी बात मान ली। शान ने छाया को कुछ इशारा किया तो वो भी आरवी के साथ आगे बढ़ गई। कार में पीछे छाया के साथ बैठी आरवी सारे रास्ते गुमसुम सी खिड़की से बाहर देखती रही। शान फ्रंट मिरर में बार बार उसके उदास चेहरे को देख रहा था। सारे रास्ते कार में सन्नाटा पसरा रहा। मल्होत्रा निवास के बाहर आकर कार रुकी, तब कहीं जाकर आरवी की पलकें झपकी और वो बिना किसी को कुछ कहे दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ गई। हॉल में पहुंची तो नज़र सीढ़ियों पर चली गई। सर्वेंट फ्लोर साफ कर चुके थे, पर आरवी की आंखों के सामने वही पहले वाला दृश्य घूम रहा था। फ्लोर पर उसको अंशु का खून नजर आ रहा था। उसकी आंखें झिलमिला उठीं और मुँह पर हाथ रखे वो दौड़ते हुए रूम में चली गई। शान आरवी के यूं जाने से कुछ परेशान हो गया है, पर जाहिर नहीं किया। सारे सर्वेंट परेशान से उसके आसपास खड़े थे। शान ने उन्हें अंशु के ठीक होने की बात बताई और फिर छाया को देखकर बोला, छाया, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद खाना पैक कर लेना, सब सुबह से भूखे हैं। जी भैया, छाया ने सर हिलाया और वहां से चली गई। शान भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंचा तो आरवी कहीं नजर नहीं आई, पर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। शायद वो नहा रही थी, पर जैसे ही शान कुछ कदम आगे बढ़ा उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई, क्योंकि अंदर से आरवी के रोने की, सिसकने की आवाज़ें आ रही थी। शान समझ गया कि वो रो रही है। कुछ देर उसने इंतज़ार किया कि उसका मन हल्का हो जाएगा तो शांत हो जाएगी, पर जब आरवी का रोना नहीं थमा तो उसने गेट नॉक करते हुए सख्त लहजे में कहा, 2-4 साल नहीं है हमारे पास, जल्दी नहा कर बाहर निकलो, मुझे भी नहाना है और अंशु के जागने से पहले वापस हॉस्पिटल भी पहुँचना है। आरवी शावर के नीचे बैठी बेतहाशा आंसू बहा रही थी और कपड़ों पर लगा खून पानी के साथ बहता जा रहा था। ये समझना जरा मुश्किल था कि आंसुओं से उसका चेहरा ज्यादा भीग रहा था या फिर शावर से बरसती पानी की बूंदों से। शान ने उसको जो जो कहा था वो सब बातें आरवी के कानों में शीशे की कीर्चो जैसी चुपती हुई सी महसूस हो रही थी। वो अंशु की हालत के लिए खुद को दोष दे रही थी। यही वजह थी कि उसके आंसू थम नहीं रहे थे। शान के शब्दों के कानों में पड़ते ही उसको अंशु का ध्यान आया और उसने एकदम से अपने आंसुओं को पोंछ लिया, फिर उठकर खड़ी हो गई। शान अब भी गेट के पास खड़ा था और जब आरवी के रोने की आवाज़ बंद हुई तब जाकर उसको सुकून आया, पर वो वहीं खड़ा रहा। कुछ देर उसके कानों में आरवी की आवाज़ पड़ी, मैं अपने कपड़े लाना भूल गई थी, आप 5 मिनट के लिए रूम से बाहर चले जाइए। ठीक है, पर ज़्यादा वक्त मत लगाना। इतना कहकर शान पूल साइड चला आया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ कानों में पड़ने के बाद आरवी बाथरूम से बाहर निकली और झट से चेंजिंग रूम में घुस गई। कुछ देर बाद शान नहाकर कपड़े बदलकर बाहर आया तो नज़र आरवी पर चली गई, जो मिरर के सामने खड़ी अपने गीले बालों का जूड़ा बना रही थी। ये देखते ही शान के मुँह से अनायास ही निकल गया, गीले बालों को क्यों बांध रही हो, ठंड लग जाएगी, सुखा लो, वक्त है अभी निकलने में। आरवी पहले तो उसकी आवाज सुनकर चौंक गई, फिर सर हिला दिया। शान अपने गीले बालों को टावल से पोंछते हुए उसके तरफ बढ़ गया। कुछ देर में दोनों तैयार होकर नीचे पहुंचे। आरवी ने शान को खाने को कहा, पर उसने मना कर दिया कि सबके साथ ही खाएगा, तो आरवी ने भी कुछ नहीं कहा। छाया ने खाना पैक कर लिया था, वो खाने का बैग लेकर बाहर चली गई। उसके पीछे आरवी थी और सबसे पीछे शान, जो फोन में कुछ देख रहा था। अचानक ही आरवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कदम लड़खड़ा गए, पर इससे पहले कि वो अपने होश गंवाकर जमीन पर गिरती, पीछे से आते शान की नज़र उसके लड़खड़ाते कदमों पर चली गई और उसने वक्त रहते आगे बढ़कर उसको अपनी बाहों में संभाल लिया। आरवी की आंखें बंद हो गई थी। शान थोड़ा घबरा गया और अपनी बाहों में बेहोश पड़ी आरवी के गाल थपथपाते हुए बोला, आरवी आंखें खोलो अपनी, क्या हुआ तुम्हें अचानक, आंखें खोलो आरवी। उसके पुकारने पर भी आरवी ने अपनी आंखें नहीं खोली तो शान ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया और सोफे पर बिठा दिया। इतने में सौरभ पानी ले आया और ग्लास शान के तरफ बढ़ाते हुए बोला, सर पानी छिड़किए, टेंशन की वजह से बेहोश हो गई होगी, फिर सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं होगा, पानी छिड़कने पर होश आ जाएगा, तब तक मैं कुछ ले आता हूँ मैडम के लिए, कुछ खा लेगी तो बेहतर महसूस करेंगी। शान ने सर हिला दिया और ग्लास ले लिया। उसने अपनी उंगलियों को पानी में डिप किया और कुछ बूंदें उसके चेहरे पर छिड़क दी। कुछ सेकंड बाद आरवी ने हल्के से अपनी आंखें खोली और आंखों के सामने शान का परेशान सा चेहरा आ गया। शान तुरंत ही चिंता भरे स्वर में बोला, तुम ठीक तो हो? आरवी ने अपना सर हिला दिया और पीछे खिसकते हुए आराम से बैठते हुए बोली, जी। शान उससे थोड़ा दूर हो गया। इतने में सौरभ दो पराठे और सब्जी एक प्लेट में डालकर ले आया। शान ने प्लेट आरवी की तरफ बढ़ा दी। पहले तो आरवी कन्फ्यूज थी, प्लेट और शान को देखने लगी, फिर शान को देखते हुए बोली, ये क्यों दिखा रहे हैं मुझे? देखने के लिए तो दे नहीं रहा हूँगा, जाहिर सी बात है कि खाने के लिए दे रहा हूँ, ताकि जैसे अभी अभी यहाँ गिरने वाली थी वहाँ हॉस्पिटल में जाकर ना फैल जाओ, वरना हमारी परेशानी बढ़ जाएंगी। शान ने आरवी को घूरते हुए उस पर तंज कसा। उसकी बात सुनकर आरवी ने प्लेट को पीछे सरकाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। शान ने उसको घूरा और सख्त लहजे में बोला, तुमसे बहस करने के लिए फालतू वक्त नहीं है मेरे पास, हमें हॉस्पिटल जाना है और जितनी जल्दी तुम खाना खत्म करोगी हम उतनी जल्दी ही यहाँ से निकल पाएंगे, इसलिए बहस करना छोड़ो और जल्दी से खाना खत्म करो। शान की जिद के आगे आरवी को हार माननी पड़ी और उसने प्लेट ले ली। उसने जैसे तैसे दो चार निवाले खाए, फिर प्लेट टेबल पर रखते हुए बोली, अब नहीं खाऊंगी मैं। शान ने भी उसको ज्यादा फोर्स नहीं किया और सर हिलाकर आगे बढ़ गया।
बाहर हो, जल्दी आना। इतना कहकर वो चला गया और उसके जाते ही आरवी मुंह पर हाथ रख के वॉश बेसिन की तरफ दौड़ गई। जितना उसने खाया था उससे ज्यादा उल्टियां हो गई। एक बार फिर उसकी हालत बेहोशी जैसी हो गई। सौरभ परेशान हो गया, उसने जल्दी से नींबू पानी बनाकर उसको दिया। तब कहीं जाकर आरवी को ठीक महसूस हुआ और वो अपना मुंह पोंछकर बाहर चली गई। बाहर पहुंची तो देर होने की वजह से शान ने घूर कर उसको देखा, पर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कुछ बोला नहीं और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आरवी भी छाया के पास बैठ गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो सब वहां मौजूद थे, लेकिन अंशु सो रही थी इसलिए बाहर ही इंतजार कर रहे थे। अनुपमा जी को देखकर आरवी उनके गले से लग गई, रश्मि से भी मिली, सबने साथ में लंच किया। वैसे भी एक दो निवाले से ज्यादा तो किसी के गले से नीचे ही नहीं उतरा था। कुछ देर बाद अंशु उठी तो आरवी को अपने पास देखकर उसका मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से खेल उठा। सब अंशु से मिले, कुछ देर वहीं रहे, फिर शाम होने पर वापस चले गए। बाकी सब रूम से बाहर आ गए, बस आरवी अंदर रह गई। सबके निकलने के बाद अर्जुन वहां पहुंचा। आरवी तो नहीं थी, बाकी सब बाहर बैठे थे और शांत थे। अर्जुन ने आकर सुयश जी और अर्पिता जी के पैर छुए तो उन्होंने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। उनके बाद अर्जुन सुभाष जी के पास पहुंचा और उनके पैर छूते हुए मुस्कुराकर बोला, सुबह तो उतने तनावपूर्ण माहौल में कोई बात ही नहीं हो सकी, पर अब सब ठीक है तो बताइए कैसे हैं आप? अर्जुन ने अभी इतना कहा ही था कि शान ने उसकी बात काटकर हल्के गुस्से में कहा, हमारी खुशकिस्मती और तुम्हारे तुम्हारे बाप की बदकिस्मती है कि अब तक जिंदा है, वरना तुम्हारे बाप ने मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शान ने उस पर तंज कसा और उसकी जुबान में कड़वाहट छलकने लगी थी, जो गलत तो नहीं था। अर्जुन तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी उसके पास अपने पिता को बेकसूर साबित करने के लिए सबूत नहीं थे और ना ही जगह ऐसी थी कि बहस की जाए, और ना ही बहस का कोई फायदा होता। अर्जुन तो चुप रह गया, जबकि सुभाष जी ने तुरंत ही उसको टोकते हुए कहा, शान ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ डैड, शान ने दृढ़ता से जवाब दिया। तो सुयश जी ने उसे टोकते हुए कहा, शान जो किया वो अमर ने किया है, अर्जुन का कोई कसूर नहीं, तो उनसे कैसी दुश्मनी? फिर आप भूल रहे हैं कि आज अगर अंशु सही सलामत हमारे बीच है तो अर्जुन की वजह से है, हमें उनका एहसान मानना चाहिए। बिल्कुल बड़े पापा, मैं औरों की तरह एहसान फरामोश बिल्कुल नहीं हूँ। इतना कहकर उसने अर्जुन की तरफ निगाहें घुमाते हुए गंभीरता से कहा, तुमने अपना खून देकर मेरी बेटी की जान बचाई, इसके लिए मैं एहसानमंद हूँ तुम्हारा, और अगर कभी मौका मिला तो यह एहसास मैं उतार भी दूंगा। पर अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे इस एक एहसान के नीचे दबकर मैं पुरानी सारी बातें भुलाकर तुम्हें और तुम्हारे डैड को माफ कर दूंगा, तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है।